ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। काले नाम थोड़ी थोड़ी लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं एक नमूना देने के लिए, क्योंकि महाराज परीक्षित के पास भी समय नहीं है और लीलाएं तो अपार हैं। काले न ब्रजतालपे न गोकुले राम केशव, जैसे जैसे समय बीता, थोड़ा ही समय बीता तो राम और केशव जानू से, घुटनों से और हाथों से रिंग मारव, चलने लगे, रेंगने लगे। रेंगना शब्द बहुत प्रसिद्ध है, जमीन पर जैसे छोटे छोटे जीव चलते हैं वैसे चलने में, जमीन से ऊपर नहीं उठ सकते थे, भूमि से ऊपर पैर पर खड़ा होने की अभी शक्ति नहीं थी। सब लोग ऐसे चल करके आए हैं। हरीश्वरी जी ने लिखा है कि भगवान लोक का अनुकरण कर रहे हैं। भगवान ने देखा, भावे कहते हैं भगवान ने देखा कि जब तक मैं लोक का अनुकरण नहीं करूंगा, अनुसरण नहीं करूंगा, तब तक लोग मेरा अनुसरण नहीं करेंगे। शायद यही सोच करके मनुष्यों की लीला कर रहे हैं कि जब मैं उनकी क्रियाओं का अनुसरण करूंगा, अनुकरण करूंगा, तब ये लोग मेरे पीछे, मैं जो कर रहा हूं ये करेंगे, चाहे सोचेंगे, मुझ पर ध्यान देंगे, तो इसलिए वे सब लीलाएं कर रहे हैं। और जैसे महाराज परीक्षित ने भी कहा था, तज जाति मनोरुंधता, मनुष्य जाति को आत्मसात करने के लिए, उन्हें अपनी लीला में सम्मिलित करने के लिए भगवान ये सब लीलाएं कर रहे हैं। बड़ा ही भयावह शब्द दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ब्रजता कालेन, काल चलता ही रहता है, इसीलिए काल की उपमा चक्र से दी गई है। जैसे किसी गाड़ी का, ट्रक का, कार का चक्का चलता ही रहता है, पार्किंग के अलावा चक्र, इसीलिए उसको कहते हैं जो भ्रमित होता रहे उसको चक्र कहते हैं। चक्र काल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलते चलते जैसे जैसे काल बीता तो थोड़े ही काल में कृष्ण और बलराम बकैया चलने लगे, चलने की शक्ति आ गई। बड़ा ही सुंदर शब्द है एक प्रकार से, क्या भगवान को भी काल ने शक्ति दिया? मनुष्यों के जो बच्चे होते हैं तो समय बीता धीरे धीरे बल बढ़ता है, तो क्या भगवान में भी बल की वृद्धि धीरे धीरे हो रही है? हाँ, ये सत्य है। योग माया के द्वारा भगवान विवश है, ऐसा नहीं है कि वे नकल कर रहे थे नहीं चलने का। जैसे पहले लेटे रहते थे वैसे लेटे रहते थे। औथानिक लीला आप लोगों ने सुना, जिस दिन करवट बदले थे तो उस दिन उत्सव किया गया, तो उसके पहले करवट भी नहीं बदल सकते थे, तो कुछ दिन तक करवट तो बदल लेते थे परंतु चल नहीं सकते थे, घुटने से भी, हाथ से भी नहीं चल सकते थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रजता अल्पेन कालेन, बीतते हुए थोड़े समय में ही राम और केशव घुटनों और हाथ के बल चलने लगे। बकैया कहते हैं इसको, चलने, घुटनों में चलत रेणु तन मंडित, मुखदध लेप किए, शोभित कर नवनीत। सूरदास जी ने गाया है, इस तरह से चलते हैं, चलने की शक्ति उसमें नहीं। तो कृष्ण को केशव क्यों कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? राम तो खैर बहुत सुंदर लग रहे हैं, रमणीय हैं, इसलिए उनको राम को, केशव को इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के जो केश थे वो अभी से बड़े ही सुंदर दिख रहे थे सुखदेव गोस्वामी। केश, वह का अर्थ होता है बधनाती या मंडवती, जो अपने केशों से दूसरों को सुख दे या बांध ले उसको केशव कहते हैं। तो इतने आकर्षक केश हैं कृष्ण के कि जो भी देखता है तो उनके केशों पर दृष्टि चले जाते, आकर्षित हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी भी आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए केशव शब्द दे रहे हैं। नहीं तो केशव क का अर्थ है ब्रह्मा, इस का अर्थ है शिव जी। तो यहां पर कौन शिव जी और ब्रह्मा को कंट्रोल कर रहे हैं? उठने की शक्ति ही नहीं है तो वो अर्थ नहीं लिया जा सकता है। ये केशों की सुंदरता का भाव है। तो राम और केशव जानुभ्याम स पाणिभ्याम रिंग माणव बिजहरतु। हरिश्वर जी कहते हैं कि बहुत काल से यह पृथ्वी दुखी थी, तो भगवान अपने हाथों से ऐसे थप थप करके चल रहे हैं जो पृथ्वी पर, तो उसको आश्वासन दे रहे हैं, उसका मानो आंसू पोछ रहे हैं कि तुम दुखी मत हो, मैं आ गया हूं। तो जानू से चल रहे हैं और हाथ से ऐसे ऐसे चल रहे, आश्वासन दे रहे हैं पृथ्वी को, सुखी कर रहे हैं। और बिजहरतु जानू से और पानी से हाथ से चलने में कृष्ण और बलराम को बड़ा सुख मिल रहा है, इसलिए विहार करने लगे ऐसा कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि कष्ट से कहीं चल रहे थे, बहुत आनंद उत्पन्न हो रहा था, विहार कर रहे थे। पावंग्र जुग्म अनुकृष्य सरीसृपंत घोष प्रघोष रुचिरं ब्रज कर्दमेषु। तो दोनों भाई अपने अपने जुगल पैर को खींचते थे, घसीटते थे। अंग्री जुगमम अनुकृष्य माणव, खींचते हुए चलते थे। और कैसे चरण थे, घोष प्रघोष रुचिरम, उनके चरण घोष प्रघोष से रुचिर थे। घोष कहते हैं बाजों को, जो शरीर में गहने लगाए हैं कृष्ण बलराम, तो उससे बड़ा सुंदर सुंदर नाद निकल रहा है, ध्वनि निकल रही है। तो मुख्य रूप से हाथ में कुछ कंकड़ है उसकी आवाज आती है, और कमर में करध्वनि है, छोटी छोटी घंटियां हैं, और पैर में नूपुर। तो वे चलते हैं तो ये बहुत बजते हैं। तो घोष प्रघोष रुचिरम, इन आभूषणों के प्रघोष से, बहुत सुंदर घोष से दोनों चरण बड़े सुंदर लगते हैं उनको। और वास्तव में वे जो बकरियां चल रहे हैं, तो चलते हैं तो ज्यादा अपने चरण के और करध्वनि के, हाथ के आभूषणों की ध्वनि सुनने के लिए वो उसको सुनना चाहते हैं बार बार, तो इसलिए वे बार बार चलते हैं, रेंगते रहते हैं कि आवाज हो, तो ये नहीं जानते कहां की आवाज हो रही है। चरण के नूपुर की ध्वनि, करध्वनि की ध्वनि और कंकड़ की ध्वनि को, और गले में भी कुछ ऐसी घंटी जैसी लटकाई रहती है, तो वे नहीं जानते हैं कहां से सुंदर आवाज आ रही है, लेकिन चलने पर ही आवाज होती है इतना जान गए हैं, तो इसलिए चलते हैं। तन्नाद हृष्ट मन सब, आगे लिखा गया है तन्नाद हृष्ट मंस। तन्नाद मतलब शरीर में लगे हुए घंटियों आभूषणों के नाद से हृष्ट मंस, बड़े खुश होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं, उसलिए चलते हैं। तो कहीं दोनों भाई चले और फिर अगर बैठ गए तो ध्वनि नहीं होती है, तो फिर चलते हैं उसी को सुनने के लिए इस तरह चलते रहते। कहां चलते हैं? ब्रज कर्द में इसु, ब्रज के कर्दम में चलते हैं। इतना दूध होता है ब्रजमंडल में कि दूध से धरती भींजी रहती है, भूमि सिक्त रहती है, कीचड़ हो जाता है, और कहीं कहीं बछड़े बंधे रहते हैं, तो बछड़ों से, बछड़ों के मूत्र से भूमि गीली रहती है। ब्रज कर्द में अथवा जानबूझ करके कीचड़ में ही चलते हैं। इसके दो भाव हैं, या तो ब्रज की भूमि जहां वे रहते हैं वहां इतना दूध दही गिरता रहता है कि कीचड़ मचा रहता है, कितना संभाल कर रखा है। गौएं जो होती है उनके थन से दूध झरता ही रहता है ब्रज अपने आप, और गोवत्सों के अर्थ कीचड़ पंख बना रहता है। तो उसमें चलते हैं, रेंगते हैं, ब्रजकर्द में बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ब्रज के कीचड़ में भगवान चल रहे हैं, क्योंकि खड़ा होकर के तो चलने की शक्ति है नहीं, कीचड़ बचा करके चले, किसी ईंट पर पैर दे करके चले या पत्थर पर निकल जाए, चलना है तो पूरे शरीर को घसीट करके चलना है। क्यों चलते हैं? चलने में मुख्य उद्देश्य है अपने आभूषणों के ध्वनि को झनझन झनझन सुनना, वो आवाज घोष प्रघोष रुचिरम, इसको सुनते रहो। सरीसृपंतव, पहले रिंग माणव कहे और अब इसको सरीसृपंतव कहते हैं, सरकते चलते। यहां सरीसृपंतव से तात्पर्य है कि प्रारंभ में केवल घुटना और हाथ के बल से नहीं चल सकते थे, कहीं कहीं पूरा पेट भी घसीटना पड़ता था शुरू में, धीरे 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 तब शरीर उठने लगा तो केवल जानुभ्यम पाणिभ्यम चलने लगे। यह शरीर पूरा लेटा है ब्रज कर्दम में, पर चलते हैं किस चीज से? हाथ से और घुटने से, पर शरीर कहीं कहीं कीचड़ में फंस जाता है, उससे निकलना चाहते हैं, शरीर में गोबर लगा है, कीच लगी है, और इससे भी और अधिक सुंदर लग रहा है। सुंदरे किम असुंदरम, सुंदर व्यक्ति को कुछ भी पहना दिया जाए फिर भी वो सुंदर लगता है, कुछ भी असुंदर नहीं। तो तन्नाद हृष्ट मनसव अनुसृत्य लोकम, इसी शब्द पर हरिश्चंद्र जी ने कहा अनुसृत्य लोकम, किसी लोक का अनुसरण करते हैं, खास करके ब्रज गोपियों का। अभी कभी कभी भ्रम हो जाता है कृष्ण बलराम को किसी गोपी को देखकर, ब्रज सीमंतिनी को देखकर, कि ये मेरी माँ है। माँ शब्द नहीं जानते हैं, माँ शब्द का पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसकी गोद में मैं रहता हूँ, चाहे जो भी भाव हो। माँ या पिता ये सब शब्द वो नहीं जानते थे, लेकिन ये समझते थे कि जिसका दूध पीता हूँ, जिसके गोद में रहता हूँ, वही है। तो पीछे पीछे झटपट झटपट जाने लगते थे, बकैया चलते हुए बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन बाद में देखते थे वो नहीं है, तो भयभीत होकर के, डर करके कि ये अनजान व्यक्ति है, वो फिर लौटते थे, भागते थे जल्दी जल्दी माता यशोदा और रोहिणी की तरफ, जल्दी जल्दी भागते। मुग्ध प्रभीतवत, प्रभीत मुग्ध का अर्थ अज्ञ, और प्रभीत का अर्थ बहुत अधिक डरे हुए कि अनजान व्यक्ति है, ये हमारे ज्ञान से बाहर की स्त्री है। तो प्रभीतवत डर करके भागते थे, उपेयंती, और कहां आते थे? मात्र माता के निकट आ जाते थे भाग कर। यह दिन भर लीलाएं चलती रहती थी, केवल एक दो बार की बात नहीं। हरिश्वरी जी इस पर उत्प्रेक्षा करते हैं, भगवान अपने चरण के आभूषण को सुनकर खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, तो इस पर वे कहते हैं कि जो मेरा अनुगमन करता है और मेरे चरण में रहता है, जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो उसकी ध्वनि को सुन करके मैं आनंदित होता हूं। जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो भगवान बहुत आनंदित होते हैं, कहते हैं उनके चरणों के दास, लेकिन उनके मुख से कुछ आवाज निकलती है तो उससे भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। तो अपने ही चरण के आभूषण को सुनने के लिए, उसके ध्वनि को सुनने के लिए वो चलते हैं, सुनते रहते। भक्तों को हमेशा आश्वासन रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि भगवान हम पर ध्यान दे रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे, बहुत पसंद करते हैं। चुपचाप रहने वाले भक्तों को उतना पसंद नहीं करते हैं जितने गाने वाले को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मन्नाद हृष्ट मनसा सततम भवंती, मतपाद भाज यह घोष जुषस्ततो हम, तन्नाद हृष्ट सुमना न कथम भवानी, त्यासी तथा स्वपद भाग उदिताभिमान। भगवान ने विचार किया कि मन्नाद हृष्ट मनस, मेरे नाद से जिनका चित प्रसन्न होता है। मैंने भी कुछ नाद किया है, भगवत गीता कहा है या भागवत में जहां तहां बोला है। तो हमारे नाद को, हमारे गीत को सुन करके जिनका मन प्रसन्न होता है और जो मेरे चरण में रहते हैं, दास हैं, तो उनके घोष को सुन करके मैं क्यों नहीं प्रसन्न होऊंगा। जो हमारी बात को सुनकर प्रसन्न होते हैं तो वे कुछ बात करेंगे तो वो मैं क्यों नहीं सुनूंगा। शायद यही दिखाने के लिए भगवान अपने चरण के नूपुर के ध्वनि को इतना आनंद से सुन रहे हैं और दिन भर सुनते रहते थे, चलते थे कि अभी भी आवाज करे और सुन। अच्छा, वो अर्थ जो मैं कहा कि लोक का अनुसरण करते हैं, चे लोकम अनुसृत्या हम संचरामी है लीलया तदैव लोको मामेष्यत इति आत्मदगुण गौरव। यदि मैं लोक का अनुसरण करूंगा लीला करते हुए, तभी लोक मेरा अनुसरण करेगा, मेरे गुणों को ग्रहण करेगा। जब मैं लोक के गुण को अपनाऊंगा तो लोक मेरा गुण पकड़ेगा, मेरा अनुसरण करेगा। भगवान बहुत चतुराई से सोचकर लीला सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हरीश्वरी जी कहते हैं इस तरह भगवान न करें तो उनको कौन पूछेगा, ये स्वाभाविक है। इसको आज के भाषा में साइकोलॉजिकल विचार कह सकते हैं कि भगवान मन में सोच रहे हैं कि क्या करूं कि लोग मेरे पीछे पड़े। भगवान ने सोचा कि लोग के पीछे पड़ू मैं, तो वे भगवान जिनके पीछे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, सारा वेद सरस्वती सब गुण गाते हैं, शेष नाग वगैरह, और वे किसी व्यक्ति के पीछे दौड़ते अनुसरण करते हैं। आज भी बच्चों को देखा जाता है ऐसे करते हैं, किसी व्यक्ति को देख करके और वे उसके पीछे चलते हैं। तो कृष्ण बलराम इस तरह से चल रहे हैं, तो लोक का अनुसरण करते हैं, नहीं भगवान इंद्रियों से परे रहे, ब्रह्मा शिवादि के स्वामी बन करके रहे, तो यहां उनका अनुसरण कौन करेगा। जब वे लोक का अनुसरण नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो भगवान इसीलिए अनुसरण कर रहे हैं। आकृष्टम पदतः सताम अघचयम स्वांगानुसक्त मुहुर गत्वा तत्सविधम तदीय करत संमार्जयाम यंजसा येषु मद गुण कीर्तनैक वचसो ये शुद्ध सत्वामृत प्रश्लिष्यद हृदय मदर्पित गृहा चारोपचारा नरा ब्रज करदम लिप्ते न गच्छता मातुरंतिकम अबोधि माधवेनेदम जतस्तत्र तथा स्फुटम। भगवान ब्रज के करदम में चल रहे हैं, ब्रज के कीचड़ में, तो अपने पैर से वे कीचड़ कुछ लेते जा रहे हैं, पैर में करदम लगा है, पंख लगा है, तो लेते जा रहे हैं। तो जाते हैं तो माँ इनके कीचड़ को पोछ देती है। भगवान यहां पर यह कह रहे हैं कि मैं जीवों के, खासकर के भक्तों के पाप को ले लेता हूं, लेकिन हमारे पंख को भी भक्त ही साफ करते हैं और मुझे पवित्र कर देते हैं। जो माँ जसोदा इनके कीचड़ को धो देती है, साफ कर देती है, और भगवान रोज कीचड़ ले रहे हैं। ये एक भाव हरीश्वरी जी कहते हैं कि ब्रज के कर्दम में भगवान क्यों लेटते हैं। तो भगवान ने सोचा कि जो मेरे लिए ही सारा गृह व्यापार रखा है, सारा कार्य मेरे लिए, दूध दही सब कुछ मेरे लिए, तो उसके चरण रज में ही रहना मेरे लिए ठीक। ऐसे महान प्रेमियों के चरण रज में रहकर अपने शरीर को पावन करना चाहिए, इसलिए भगवान ये सब लीला कर रहे हैं। लोग कीचड़ में रहना चालू किए, गोप गोपी और गऊ के चरण रज से वो सिक्त रहता था, धूली, ऐसे भगवान अपने को पवित्र करना चाहते हैं। तो इस तरह वे माँ के पास लौटते हैं, तो तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पंकांगराग रुचिरौ उपगुह्य दोर्भ्याम दत्वा स्तनम प्रपिबतः स्म मुखम निरीक्ष्य मुग्धस्मितल्पदशनम् यजतु प्रमोदम्। हनुमान जी ऊपर है क्या? तन मा तरव निज सुतव। तो जब राम और केशव किसी अनजान व्यक्ति को अनजान स्त्री के पास से भागते हैं अपने माँ के पास, तो उनके पंकांग राग रुचि रव, पंक रूपी अंगराग मतलब ब्रज के कीचड़ रूपी अंगराग से सुंदर बने हुए शरीर को माताएं उठाकर गोद में ले लेती। वे तनिक हिचकती नहीं है कि इसके शरीर में मिट्टी लगी हुई है, तुरंत उठा लेती। निज सुतव, यहां ध्यान रखना चाहिए, निज सुतव का अर्थ है अपने पुत्रों को, निज निज सुतव नहीं कहा जा रहा है। यह नहीं समझना चाहिए कि सर्वदा रोहिणी बलराम जी को उठाते थे और जसोदा कृष्ण को उठाते। मातृ व्यत्ययेन, श्रीपद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई भी किसी को उठा लेते थे, और वे दोनों भाई भेद नहीं करते थे। कभी कभी कृष्ण रोहिणी जी के गर्भ में रोहिणी जी के गोद में चढ़कर और दूध पीने लगते थे, और श्री बलराम जी यशोदा जी का दूध पीने लगते। ये निज सुतव है, निज सुतव मतलब अपने पुत्र। निज निज शब्द रहता तब उसका अर्थ होता अपने अपने पुत्र। घृणयाश्नुवन्त्य, वे माताएं कैसी हैं, घृणा से उनके दूध चू रहे। संस्कृत में घृणा का अर्थ होता है स्नेह, ठीक हिंदी से विपरीत। हिंदी में लोग प्रयुक्त करते हैं घृणा, घृणा का अर्थ है हेट, नहीं पसंद करना, लेकिन संस्कृत में घृणा का अर्थ है स्नेह, प्रेम। तो घृणया स्नुअंत, स्नेह से दोनों माताओं के दूध चूते रहते थे। तो पंकांग राग रुचि रहो, पंक रूपी अंगराग से रुचिर बने हुए, सुंदर बने हुए उनको अपने दोर्भ्याम अपने दोनों बाहों से उठाकर, और दत्वा स्तनम, स्तन देती थी पीने के लिए, पीवतोष्म मुखम निरीक्ष, और पीते हुए बच्चे के मुख को देखकर यजतु प्रमोदम, परमानंद को प्राप्त होती थी। भगवान इस तरह सुख दे रहे, नेमम बिरिंचो लभते प्रसादम। माँ यशोदा ने जो सुख पाया वह सुख न ब्रह्मा को दिया भगवान ने, न शिव जी को दिया, न शंकरसन को दिया, और न तो लक्ष्मी जी को दिया। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा है, आगे चलकर यजतु प्रमोदम, उनको दूध पिला करके और उनके मुग्ध और मंद मुस्कान से युक्त मुख को देख करके प्रमोदम, प्रकृष्ट मोदम प्राप्त की। तो उस आनंद की तुलना नहीं की जा सकती, कितना आनंद माताओं को मिल रहा था दूध पिलाने पर। मुख कैसा था? मुग्ध था और स्मित से युक्त था, मुग्धस्मितम। मुग्धस्मितम, मुग्ध का अर्थ होता है अज्ञ, देश काल का जिसको ज्ञान न हो, या मुग्ध का अर्थ है वो जो अनजान औरत के पास से भाग करके आए थे जल्दी जल्दी, तो कुछ भयभीत से हैं, मुग्ध है। और जब दूध पीने को मिला तो दूध तो दिव्य है, आनंदमय है, तो कृष्ण को सुख मिल रहा है। जब बच्चे को सुख मिलता है तो मुख पर मुस्कान छाती है। तो दूध पी करके कृष्ण आनंद में है, और उनको दूध पिला करके माताएं तो प्रमोद में, प्रकृष्ट मोद में। यही इस लीला का लाभ है। वास्तव में माताओं को या अन्य ब्रजवासियों को यह सुख देने के लिए भगवान यह लीला कर रहे हैं, और हम लोगों का सुख है इसको सुनकर और बोल करके प्राप्त करना। तो जो सुख कृष्ण ने यशोदा को दिया उससे कम सुख नहीं मिल सकता है यदि ठीक से इस कथा को कहा जाए, सुना जाए, तो प्रमोद मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों, और कहीं सुख नहीं, सच्चा सुख भगवान के भजन में मिलता है। तो भगवान जिसके गोदी में चढ़कर और दूध पी रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और उनके मुस्कुराते हुए मुख को मां देख रही हैं, और दूध पिला रही हैं, तो इस तरह से प्रमोदम ययु यजतु, महान प्रमोद को प्राप्त। और क्या देख रहे हैं मुख में? मुख तो ऐसे मुग्ध है और उसमें हंसी है, और अल्प दशनम, छोटे छोटे दांत हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं परिमाण की दृष्टि से और संख्या की दृष्टि से अल्प कहा जा रहा है, अल्प दशनम। अभी 32 दांत नहीं आए हैं, थोड़े थोड़े दांत आए हैं और साइज भी उनका बहुत थोड़ा थोड़ा, छोटे छोटे दांत हैं और संख्या में भी अभी 2-4 उगे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। इसका अर्थ है कि वे जब स्मित कर रहे हैं या पी रहे हैं तो उनके दांत दिखाई पड़ रहे हैं छोटे छोटे, बड़ा सुंदर मुख। यही माँ जशोदा रोहिणी का दिव्य सुख है। दत्वा स्तनम प्रपिबतो स्म मुखम निरीक्ष, ये पीबता नहीं कह रहे हैं, प्रपिबता, पीने में भी इनको तृप्ति नहीं हो रही है, खूब देर तक पीते रहते हैं। माताएं भी पिलाती रहती हैं, तो इनको पीने में आनंद मिल रहा है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रपिबता प्रकर्षण पीबता, और उधर उनको पिलाने में साधारण आनंद नहीं आ रहा है, प्रकर्षण आनंद आ रहा है, इसलिए उधर भी प्रमोदम। प्रपिबत और प्रमोदम दोनों ओर एक समान सुख है। भगवान को सुख मिल रहा है माँ का दूध पीकर, और माँ को सुख मिल रहा है दूध पिलाकर, और बच्चे की तृप्ति को देखकर। यह नित्य लीला है, सर्वदा ये चलती रहती है लीला। माँ को यह दिव्य सुख भगवान ने दिया, जेतु प्रमोदम, ये प्रमोद यही परम लाभ, उसे सुख में और कृष्ण में भेद नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह सुख है लक्ष्य है और भगवान की सेवा जो है साधन है, नहीं, सेवा करके सुख प्राप्त हुआ, लेकिन वह सुख और तरह से होने लगे तो सेवा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। वो सुख है और वो सेवा दोनों एक वस्तु है।
जर्यंगना दर्शनीय कुमार लीलौ अंतर ब्रजे तदबला प्रगृहित पुच्छहि वत्सये रितस्ततौ भावनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त उज्जित गृहा जयसुर हसन्त्यः।
जब अंगनाओं के स्त्रियों के लिए दर्शनीय कुमार लीला करने लगे दोनों बच्चे, दोनों भाई अंतर ब्रज, ब्रज में क्या क्या करते थे? यहाँ एक बात कही जा रही है, अंगना दर्शनीय लीला, अंगना स्त्रियों को कहते हैं। छोटे छोटे थे तो अभी पुरुषों के समाज में बहुत कम जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे स्त्रियों के बीच ही रहते हैं, तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इनकी जो लीलाएं होती थी अधिकतर अंगना दर्शनीय, स्त्रियों के द्वारा दर्शनीय, देखने ही जो कुमार लीला, कुमार लीला कर रहे थे अंतर ब्रजे। तो ब्रज की गोपियां अबलाएं इनकी लीलाओं को देखा करती थी। एक लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं कि जानू से और घुटने से, हाथ से चलते हुए कृष्ण बलराम कहीं कहीं जाते थे तो बछड़े बैठे रहते थे, गोवत्स गायों के छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते थे, तो जाकर उनका पूछ पकड़ लेते थे, कभी कभी कहीं साथ 2-3 बछड़े का पूछ पकड़ते थे या कभी एक का, तो पूछ पकड़ने से बच्चे खड़े हो जाते थे वो बछड़े और इधर उधर चलने लगते थे, भागने लगते थे। तो पहले पूछ पकड़ते थे और वो भागने लगते थे, तब ये और जोर से पकड़ लेते थे कि छूट न जाए, ये नहीं जानते थे कि छोड़ देंगे तो हम सेफ रहेंगे, थोड़ा पकड़ते थे और वो खींचते थे तो ये भी खींचे जाते थे, तो और देरता से पकड़ लेते थे और आय 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 रोने लगते थे कि ये क्या हो गया यह बुद्धि नहीं है कि छोड़ दे, तो फिर रोने लगते थे, आय 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 करते रहते थे, तो गोपियां दौड़ती थी बछड़े को रोक करके और तब इनको हटाती थी और केवल रोते थे या भी नहीं कहते थे कि छोड़ा हो या ये करो, क्योंकि भाषा भी जानते नहीं थे, बोलना नहीं जानते थे, कुछ कहते नहीं थे मुझको छुड़ा हो या ये हो गया, केवल रोने लगते थे। प्रगृहित पूछे तो जहां पर ब्रह्म को भगवान को बछड़े अपने पूछ में घसीट रहे हैं उस ब्रज की महिमा को कोई क्या कहेगा बताइए। हरिश्री जी तो लिखे हैं ये तो सबसे बड़ा आश्चर्य हो गया, आज तक हमने सुना था कि भगवान इंद्रियों से परे हैं, गो से परे हैं, गो माने इंद्रिय और गो माने गौए, तो इंद्रियों से परे हैं और उनको इंद्रियां अपने पूंछ में घसीटे, ये तो अजीब बात हो गई। जो इंद्रियातीत है, पर ब्रह्म है, चिन्मय सत्ता जिनकी है, उनको भी छोटी छोटी इंद्रियां और अपने पूंछ में इनको घसीट रही हैं ब्रज में, तो क्यों नहीं विस्मय हो जाएगा। गोपियों को बड़ा विस्मय होता था और गोपियों में कोई कोई गोपी श्रुति है, हरिश्री जी कहते हैं श्रुतियां भी गोपी बनी हुई हैं। ये दशम स्कंध में लिखा गया है वेद स्तुति में, तो उनको विस्मय हो रहा है, तो कहते क्यों नहीं वेद को विस्मय होगा। श्रुतियां तो आज तक यही जानती थी कि भगवान इंद्रियों से परे हैं और वही भगवान इंद्रियों के द्वारा खींचे जा रहे हैं ब्रज कर्दम में और रो रहे हैं, छोड़ने की भी शक्ति नहीं, अंत में आकर के गोपियां छुड़ाती हैं, वही श्रुति रूपिणी गोपियां, तो वो श्रुतियां वर्णन करती नहीं नहीं इंद्रियों से परे है ब्रह्म, छुड़ा करके और उसको ठीक करती। इस तरह से हरिश्री जी ये अपनी उत्प्रेक्षाएं करते हैं। जहां भगवान गाय के पोंछ में खींचे जा रहे, घसीटे जा रहे, वो धाम कितना महान होगा और वहां के वासी, जहां गौएं भगवान को पूंछ में खींच रही हैं, तो दूसरे मनुष्य क्या करेंगे, उनके बस में क्यों नहीं भगवान होंगे। वत्सय रितस्ततः प्रगृहित पुच्छय वत्सहि इतस्ततः अनुकृष्य मानव। प्रगृहित पूछे, प्रगृहित शब्द बता रहा है, जब बछड़े उठते थे तो और भी प्रकर्षण पकड़ लेते थे पूछ, और वो कृष्ण बलराम ऐसा अनुभव करते थे कि हम पर संकट आ गया है। अरे अपने आप बछड़े की पूछ पकड़ रहे हो, भाग रहा है तो छोड़ दो, लेकिन वे सोचे कि अब हम छोड़ेंगे तो कोई और दुख में पड़ जाएंगे, इसलिए पकड़ लिए, तो वे घसीट रहे जहां तहां। यह बात है कि बछड़े जो है बहुत कोमल भूमि पर बैठते थे और गोबर भी ठंडे ठंडे पड़े रहता था जहां तहां, पानी कीचड़, इसलिए बहुत कोमल जमीन पर घसीटते थे, कंकड़ पत्थर कांट पर नहीं घसीटते थे। और वत्सय शब्द बहुवचन है, अगर एक एक बछड़े को पकड़े होते एक एक भाई तो दो वचन में रहता है। इसका अर्थ सिर्फ सनातन गोस्वामी करते हैं कि हो सकता है कभी कभी ये कहीं शायद कई बछड़े का पूछ पकड़ लेते होंगे, अथवा पकड़ पकड़ कर और फिर गोपियां छुड़ाती होंगी तो फिर पकड़ते रहते होंगे, दिन भर इनका यही काम रहता होंगे। वत्सय रितस्ततः अनुकृष्य मारव, ये खींचे जाते थे घसीटे जाते थे, यही इनका आनंद था। भगवान हरिश्वर जी कहते हैं कि भगवान इस लीला के द्वारा यह सिद्ध कर रहे हैं कि चाहे मैं और अवतारों में भले इंद्रियों से परे हूं, लेकिन इस अवतार में मैं सबके इंद्रियों के अंदर आ रहा हूं, इसलिए इंद्रियों से मेरा भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। मन में तो शुरू में ही आ गए, वसुदेव जी के मन में आ गए, मन इंद्रियों का नायक है और अब छोटी छोटी इंद्रियों के भी अधीन घूम रहे हैं, इसलिए इंद्रियों को लगाना चाहिए, आंख से भगवान को देखना चाहिए, वाणी से कीर्तन करना चाहिए, कान से श्रवण करना चाहिए, नासिका से उनका सुगंध सूंघनी चाहिए, उनका स्पर्श करना चाहिए। भगवान कृष्ण इंद्रियों से परे नहीं, जो भगवान इंद्रियों से परे हो रहते रहे, इनको तो इंद्रियां घसीट रही है इधर उधर, और घसीट करके मानो इंद्रियां इसको प्रचार करना चाहती हैं, भगवान भी प्रचार करते हैं कि देखो अपने इंद्रियों के बस में कोई मुझे कर सकता है। भगवान को दर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं सुनना चाहिए भगवान इंद्रियों से परे हैं, हम क्या करें कैसे करें, गजब हैरान हूँ भगवान तुझे कैसे रिझाऊ मैं गजब हैरान हूँ भगवान। अरे क्यों हैरान हो रहे हो? हरे कृष्ण महामंत्र जपो, प्रणाम करो, भगवान सुलभ। और कोई भक्ति न हो तो ब्रज के धूल में लोटना चाहिए जहाँ भगवान लोटे हैं खूब। भगवान भी आ करके यहाँ खींचे जा रहे करदम में, कीचड़ में, और तो वहां पड़े रहना भी एक बहुत बड़ी भक्ति। कई आचार्यों ने कहा है कि अगर भगवान कृष्ण ब्रज से बाहर खड़ा होकर कहें कि आओ यहाँ मेरा दर्शन करो तो मत जाओ, मत करो। वृंदावन सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रेमन वृंदा विपिन निहार। ब्रज के बाहर, वृंदावन के बाहर अगर कृष्ण हो तो उनको भी देखने मत जाओ। ये अनन्यता के आवेश में कुछ भक्त कहते हैं, भटकत फिरत गौड़ गुजरात। कुछ लोग गुजरात जाते हैं द्वारकाधीश का दर्शन करने, कुछ लोग उधर जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, सीधर उधर जाते हैं। उसी पर कहते हैं भटकत फिरत गौड़ गुजरात, कुछ लोग भटक रहे हैं इधर उधर। अरे ब्रज के धूल में लौटो, यहाँ भगवान लौट रहे हैं, यही इसी रज के सहारे पड़े रहेंगे तो भगवान तो सुलभ हैं ही। कौन ऐसा धाम है जहां भगवान को बछड़ा अपने पूछ में लपेट कर खींच रहा हो कोई है ऐसा धाम? वत्स इतस्ततः अनुकृष्य मानो, इतस्ततः में यहां वहां तो खींचे जा रहे। ये लीला करते तो गोपियां घर का काम छोड़ करके उज्जित गृहा, इनको देखने में ही लगी रहती थी हमेशा, घर का काम नहीं कर पाते पड़े थे इनको बचाने के लिए और ये लीला देखने के लिए ऐसा करती रहती थी। अभी छुड़ाया तब तक 10 मिनट के बाद फिर रोने लगते थे, फिर खींचे जाते थे। तो जहसु उज्जित गृहा जहसु रहसंत, बहुत प्रसन्न होती थी, हंसने लगती थी ठठा करके कि ये अभी इनमें कितना बल आ गया हाथ में, ये कोमल कोमल हाथ है और चला नहीं जाता है, कोई चीज हाथ से उठा नहीं सकते, लेकिन पूछ पकड़ने में इनके हाथ में इतनी शक्ति कहां से आ गई खींचे जा रहे थे तो वे हंसती रहती थी। घर का काम धंधा छोड़ करके कृष्ण बलराम को देखती रहती थी, उनको देखने में बहुत सुख मिलता था। भगवान यह सुख देने के लिए ही ये सब लीला कर रहे हैं। तो एक लीला के द्वारा भगवान बहुत बहुत संकेत करते हैं। जैसा हरिश्री जी ने बताया है कि भगवान की जो लीलाएं होती हैं वो प्रयोजन शून्य नहीं होती हैं, और इसके साथ ही साथ एक ही बार में वे कई कई प्रकार की बातों को प्रकट करते हैं। इसका ये आशा है, इसका ये आशा है, इसका ये आशा। वास्तविक उसका आशय तो है ब्रज गोपियों को सुख देना, वहां के भक्तों को सुख देना, लीला करना, और एक आशय है कि बाद में भक्त लोग हमारी इन लीलाओं का गान करेंगे, श्रवण करेंगे तो उनको सुख प्राप्त होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ उन लीलाओं द्वारा और भी वे संकेत करते हैं। देखो जैसे मैं गो के पूछ में फंसा हुआ हूं, ये पूछ पकड़ करके मैं चल रहा हूं, तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति मुझको अपने इंद्रियों में पा सकता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि इंद्रियां कृष्ण को नहीं पकड़ी हैं, कृष्ण इंद्रियों को पकड़े हैं। हरिश्री जी ये कहते, भूल नहीं करनी चाहिए कि इंद्रियां भगवान को वश में कर लेंगी, लेकिन भगवान जब इंद्रियों को पकड़ेंगे तब क्या होगा? गौ माने इंद्रिय और गौ माने गाय, बस भगवान स्वयं ही जिसके इंद्रिय में आना चाहे तो कौन रोक सकता है? तो भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि मैं, इंद्रियां मुझे नहीं पकड़ सकती हैं, मैं इंद्रियों से अतीत हूं, लेकिन मैं किसी की इंद्रिय में आ सकता हूं, और ऐसा आ सकता हूं कि वे इंद्रियां हमको जैसे चाहे नचा सकती। हम रासलीला में देखते हैं एक भगवान की गोमय लीला होती है, गोबर से उनका श्रृंगार किया जाता है। एक बार कोई गोपी आई कृष्ण का दर्शन करने के लिए, लेकिन वो कुछ गोबर चुन रहे थे, गोमय गाय का गोबर लेने आए, तो बहाना की थी नंद बाबा के खिड़क में। तो कृष्ण ने कहा कि तुम चोर इधर क्यों आई, क्यों इधर आई। तो कुछ बातें चली, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन कृष्ण ने कहा ठीक है तुम गोबर ले जा सकती हो, लेकिन मुझे माखन दो। तब एक एक के खेप पर एक एक लोंदा माखन लूंगा। तो गोपी के घर में माखन की तो कोई कमी नहीं थी, उसने कहा ठीक है, लेकिन तुम उठाओ गोबर को। वो अपनी टोकरी में उठा देती थी तो कृष्ण उसको उठाते थे। कृष्ण ने कहा भी है कि अपनी माँ से कि माँ ये हमसे गोबर उठवाती है हा करके इतना हमको तंग करती है। मैया जब मैं घर से चलू बुलावे ग्वालिन घर में मां, और उसी में कहें कि हमसे गोबर उठवाती, तो गोबर उठाते हैं। तो गोपी यह गिनने के लिए कि कितना खेप ले गई गोबर, कितनी बार ले गई, हम लोग खेप कहते हैं, छेप शब्द है संस्कृत का, तो खेप कितना कितनी बार ले गई, तो उसके लिए क्या निशान बनाना था। तो वो गोबर से कृष्ण के देह पर गाल पर लकीर खींचती थी कि एक बार ले गई। तो उधर से फिर आती थी ले जाने में, तो कृष्ण सोचते थे तो बहुत देर कर रही है, इस तरह से तो मेरी कमाई बहुत कम होगी। तो वे फिर गोबर लेकर स्वयं ही लकीर बना लेते कि ज्यादा लोंदा मिलेगा माखन का इस तरह से करते थे। तो ये भगवान की लीलाएं हैं ब्रजवासियों को सुख देने के लिए। तो भगवान इन लीलाओं द्वारा ये संकेत कर रहे कि मैं सुलभ हूं, तेषा हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान को दुर्लभ अलख निरंजन लोग कहा करते हैं, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं मैं सुलभ हूं। किसके लिए सुलभ है? नित्य युक्तस्य योगिनः, जो नित्य युक्त है, मेरी भक्ति में लगा हुआ है, मुझे प्राप्त करने के उपाय में लगा हुआ है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। कितना सुलभ है भगवान, कितना सुलभ है तो ब्रज में देख सकते हैं। जो परब्रह्म है किसी के ध्यान में नहीं आता है, वो ब्रज को एक खिलौना है, एक पद में गाते हैं ना, वो ब्रज का एक खिलौना बना हुआ है, जहां बछड़े घसीट रहे हैं पूछ में इस भगवान को, परब्रह्म को और इस तरह से है। तो वत्सय ऋतस्तथा उभौ अनुकृष्ट मानव प्रेक्षंत्य उज्जित गृह। प्रेक्षंत्य का अर्थ प्रक्षंत्य, गोपियां प्रकृष्ट रूप से देखती रहती थी। घर के काम धंधा में उनकी रुचि नहीं थी, वो सर्वदा यही प्रतीक्षा करती रहती थी कि कब इस तरह का दृश्य हो रहा है। और केवल एक यह तो एक उपलक्षण दिया गया कि बछड़ों के पूंछ में खींचे जा रहे हैं, लेकिन और इसी तरह की बहुत बहुत लीलाएं हैं। सुखदेव गोस्वामी यदि इस लीला माधुरी में बह जाते तो महाराज परीक्षित कोई और कथा नहीं सुना पाते, क्योंकि एक से एक तरंग है, धारा है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा वर्णन करके निकल जा रहे हैं। इतनी ही लीला वे कह रहे हैं, बछड़े के द्वारा कृष्ण बलराम को खींचे जाने की। उभौ अनुकृष्य माणव, तो श्रृंगग्नि दंश टसी जल द्विजकंट के भ्य क्रीड़ा परव अति चलव ससुतम निषेध गृहयाणी कर्तुमपी जत्रत जनन्य सेकात आपतुरल मनसोनवस्था। तो बछड़ों के भाग्य की सराहना की, वे बछड़े कितने भाग्यशाली थे, कितना सुख उनको मिलता होगा जब दिव्य सच्चिदानंद हाथों से भगवान उनको पकड़ते होंगे, तो उसे सुख मिलता होगा। हरिश्री जी एक और विभाव कह रहे हैं कि जिनका दूध भगवान पीते हैं उनकी संतान है ये बच्चे, जिन गौओं का दूध पी रहे हैं उनकी संतान ये बच्चे हैं। तो उसके द्वारा ये संकेत करते हैं कि जो लोग भक्त हैं, मुझे भोग लगाते हैं, मेरी सेवा करते हैं, तो उनके संतान के चरण रज में मैं घूमता हूं, उनकी तो बहुत दूर की बात है। बछड़े के खूर से जो गड्ढे बन रहे हैं उस पर भगवान जा रहे हैं, बलराम जी के साथ खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। तो दूध तो पीते हैं गौओं का, सेवा करती हैं गौएं, तो गौओं के बच्चों के खुर रज में लौट रहे हैं। तो भगवान संकेत कर रहे हैं कि जो कृष्ण कांसस हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, उनके चरण रज में तो भगवान लौटेंगे ही, इसमें कहना ही क्या है, उनके संतान भी होंगे जो कृष्ण को कुछ दे नहीं रहे हैं, उनके भी चरण रज में मैं लौटता हूं। तो धन्य है वे बच्चे जो भक्तों के बच्चे हैं, भगवान के जो भक्त है उनके बच्चे धन्य, वे भी कृष्ण को पूछने खींचते हैं। ये संकेत कर रहे हैं। अच्छा, तो कृष्ण और बलराम अति चलाऊ, बहुत चंचल थे बचपन में, बहुत चंचल। अति चलाऊ, अति का अर्थ है कि अब मैं शब्द में नहीं वर्णन कर सकता हूं कितना चंचल थे। अति चलाऊ, चलाऊ का अर्थ होता है चंचल, और अति का अर्थ है कि ऐसे चंचल लड़के आज तक हुए नहीं सृष्टि में। अति चपल क्या करते थे, श्रृंगी, सिंह वाले जानवर को पकड़ने दौड़ते थे। उनको पता नहीं होता था कि सिंह से मार देगा, ये भयावह जंतु है। तो श्रृंगी, सिंह, सिंह वाले जानवर जैसे बैल और सिंह और अग्नि, अग्नि की तरफ दौड़ते थे। कहीं जग किया जाता था या भोजन बनाया जाता था तो अग्नि को पकड़ने दौड़ते थे। लाल लाल अंगार और लपट को वो नहीं जानते थे कि जलाने वाली चीज है, इसे दुख होगा, वो दौड़ते थे पकड़ने के लिए। तो माताएं घर का काम धंधा पूरा छोड़ करके केवल इनको पकड़ने में लगी रहती थी चौबीसों घंटे। जब तक सोते नहीं थे तब तक वो हमेशा इनको पकड़ना, इधर रखना, तब तक तुरंत जाकर के फिर पकड़ना चाहते थे। आग को पकड़ने दौड़ते थे। और दृष्टि, दृष्टि का अर्थ है दांत वाले जीव, जैसे कुत्ता बानर, उनको पकड़ने दौड़ते थे। इनको पता नहीं होता था कि बानर काट देगा या कुत्ता काट देगा, यद्यपि वे सब काटने वाले नहीं थे भगवान को। भगवान का ऐसा स्वरूप है कि उसको देख करके हिंसक से हिंसक जीव का भाव बदल जाता। जिने ही निरखी मग सांप इन बीच, भगवान श्री राम जब वन में चलते थे तो उनके चरण को देख करके सांप और बिच्छू भी अपना विष छोड़ देते थे, वे उसके लिए कठोर नहीं थे, वे भी प्रेम करने लगते थे। तो यद्यपि वे काटते नहीं, लेकिन फिर भी माताएं सोचती थी कि वो कुत्ता के मुख की तरफ जा रहा है, वो दांत वाला है, वो काट देगा, और उसको पकड़ने के लिए दौड़ते थे, बानर को पकड़ने के लिए दौड़ते थे। दृष्टि में दांत वाले जीव, दृष्टि असी, कहीं पर तलवार खड़ग रखा रहता था उसको दोनों भाई उठा लेते थे, कभी कभी जाकर ले लेते थे तलवार, और उनको पता नहीं था कि ये काटने वाला है, अंग में लग जाएगा, तो दौड़ती थी तुरंत बचाने के लिए। असी कंट के जल, जल भी कहीं रहता था जैसे कुंड या सरोवर पास में कोई पुष्करणी ब्रज के भीतर, तो उसमें चले चलना चाहते थे। बकैया चलते हुए ही, या अभी तो पैर से चल करके भी जा, अभी भाई पैर से नहीं चल रहे, थोड़ा थोड़ा चलने लगे होंगे क्योंकि आगे वर्णन करेंगे सुखदेव गोस्वामी। तो तलवार उठा लेते थे, चल रहे होंगे, खड़ा हो रहे होंगे तभी, अथवा बकरियां चलकर हाथ से तलवार पकड़ना चाहते हैं तो हाथ तो कट जाएगा, उसको पकड़ना चाहते थे तो माताएं रोकती थी। कंट के भ्या, कहीं कहीं कांटा रखा रहता था, घेरान ब्रज में घेरा किया जाता था, उसमें जाते थे, ये पता नहीं रहता था कि इसमें फंस जाएंगे, शरीर में कांटे धस जाएंगे। क्रीड़ा परऊ, हमेशा क्रीड़ा परायण थे, हमेशा क्रीड़ा परायण, एक खेल करना वो खेल करना। अति चलाऊ, तो स्वसुतौ निषेध, ऐसे अपने पुत्रों को मना करने के लिए, पकड़ने के लिए, गृहयाणि कर्तुम अपि यत्र न तज्जनन्यो सेकात, घर के कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाते थे। भोजन बनाने चली तब तक इन बच्चों को पकड़े कि भोजन बनाए, घर का काम नहीं कर पाती थी। आपतुर अलम मनसोनवस्थ, मन की अनवस्था को प्राप्त होती थी। यहां मन की अनवस्था का अर्थ है परमानंद, परम सुख। ऐसे लौकिक दृष्टि से लगता था कि उनका मन बिल्कुल बेचैन हो गया इन बच्चों के कारण, परेशान कर दिए, लेकिन श्रीधर स्वामी जी यहां पर लिखते हैं कि गृह सुखस्य पराकाष्ठाम आपतु, गृह सुख की पराकाष्ठा को प्राप्त करते थे। कि मन बेचैन होता था, लेकिन बेचैन से क्या हो, हमेशा कृष्ण को बचाने के फेर में रहते थे बलराम को, इसीलिए बड़ा सुख मिलता था। तो घर का काम धंधा भी छोड़े ही चुकी थी, हमेशा इनको देखना पड़ता था। अनवस्था मन अनस्थैर्य, मन चंचल रहता था। और हमेशा कहती थी कैसी ऐसी लड़के कैसे हो गए, इतना क्यों चंचल है, ये है वो है। तो भगवान यही सुख देने के लिए माताओं के प्रति ये व्यवहार करते थे, हमेशा इन सब वस्तुओं को पकड़ना चाहते थे। तो जल के पास जाते थे तो उनको डूबने से बचाना, कंटक से बचाना, सिंह वाले दांत वाले जानवर आदि से बचाना, अग्नि से बचाना, इसी में दिन भर लगे रहते थे। तो काले नाल पेन राजर से राम कृष्ण गोकुले अघृष्ट जानु भी पद भीर विचक्रम तुरंजसा। अब थोड़े ही समय में राम कृष्णश्च, अब कृष्ण शब्द कह रहे हैं आनंदगण, प्रथम बार सुखदेव गोस्वामी यहाँ कृष्ण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लीला में। अब नाम मिल गया है तो इसलिए प्रयोग कर रहे हैं, राम को तो राम कह रहे हैं, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बड़े रमणीय है। तो और कृष्ण तो परमानंद घन सर्वाकर्षक हैं ही, इसलिए कृष्ण दे रहे हैं। तो रामश्च कृष्णश्च, यहाँ भगवान नहीं कह रहे हैं, रामश्च कृष्णश्च गोकुले अल्पकाले न हे राजर्षे बिना जानु घी से चलने लगे। अघृष्ट जानु भी मतलब खड़ा होकर के चलने लगे, कभी कभी गिर जाते थे, अभी नया नया चल रहे थे, लेकिन अब घुटना नहीं घिसना पड़ता था, अब बकाइया नहीं चलना पड़ता था। अघृष्ट जान भी पद भी विचक्रमतु अंजसा, और अंजसा विचक्रमतु कमर थे, अब वो चलने लगे, दौड़ने भी लगे, बहुत जल्दी जल्दी सीख गए चलना, चलने लगे पैर से। तो पैर से जब चलने लगे तब अब उनकी लीला सुनिए। अभी तो घर में बंद रहते थे, बहुत कम दूर तक चलते थे, आदमी घुटने से कितना दूर जाएगा, रेंग करके और बकैया चलकर कितना दूर जाएगा, इसलिए बहुत थोड़े क्षेत्र में रहते थे। और जब पैर से फ्री चलने लगे दोनों भाई, तब उद्धम मचाना चालू किए ब्रज में। और मुख्य उद्धम क्या था, चोरी अभी चालू कर। और वह किस लिए, ब्रज स्त्री नाम मुदन चिक्रीड़े, ब्रज की स्त्रियों को परम सुख देने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पहले सुखदेव गोस्वामी कह देते हैं और गोपियों को परम सुख मिलता था, परंतु उनके उलाहना से ऐसा लगेगा कि ये तो तंग हो गई है, परंतु ध्यान रखना चाहिए भगवान उन्हीं को आनंद देने के लिए सब लीला कर रहे हैं और उनको परम आनंद मिला। ततस्तु भगवान कृष्णो वयश्चैर ब्रज बालकैः सह राम ब्रज स्त्रीणां चिक्रीड़े जनयन मुदम। अब तक तो दोनों भाइयों की लीला को समवेत रूप से कह रहे थे, लगभग समान लीला चलती थी, लेकिन कृष्ण अब लीला करने में कुछ आगे बढ़ गए बलराम जी से, खास करके यही चोरी में, इसलिए उनके लिए अलग कह रहे हैं और भगवान कृष्ण कह रहे हैं। यहाँ भगवान का अर्थ है कि भगवत्ता का सार ब्रज माधुरी, मतलब अपना माधुर्य जो प्रकट किए हैं वो भगवान, भगवान माने ये हुआ अपनी भगवत्ता का सार, भगवत्ता का सार है माधुर्य, माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कैल परचारता है। तो माधुर्य जो है वही भगवत्ता का सार है। यहाँ भगवान शब्द से उनके ऐश्वर्य का बोध नहीं करना चाहिए, माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। तो अपना माधुर्य जब विशेष प्रकट कर रहे हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण सह राम राम के साथ और वयस्क ब्रज बालक और अपने साथी ब्रज बालकों के साथ, अपने मित्र ब्रज बालकों के साथ बहुत प्रकार की लीला करने लगे। ब्रजस्त्री नाम मुदम जनयन, ब्रजस्त्रियों को सुख देने के लिए, मोद देने के लिए लीला करने लगे। भगवान जो भी लीला करते हैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए करते हैं, और ब्रज में तो ब्रजवासिनी स्त्रियों को सुख देने के लिए लीला कर रहे हैं। अभी जो लीला, जिस लीला का वर्णन प्रारंभ हो रहा है स्पेशली सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ब्रजस्त्री नाम मुदम जनयन, ब्रजस्त्रियों को आनंद देने के लिए, आनंद उत्पन्न करने के लिए लीला करने लगे। वयस्य ब्रज बालक, वयस्य का अर्थ होता है अपने आयु के समान बच्चों के साथ, तो वे भी आयु में, वेशभूषा में, स्वभाव में, शील में सब कृष्ण जैसे थे, छोटे छोटे कृष्ण चोरी करने के लिए। तो जितने ब्रज के छोटे छोटे बच्चे थे सब मिले, सब कृष्ण को चाहते ही थे, ये भी उनको चाहते थे, क्योंकि चोरी में भी बहुत सहायता की जरूरत। कृष्ण छोटे छोटे बच्चों को लगाते थे कि तुम उस द्वार पर खड़े रहो, उधर देखो कहाँ है गोपी। तो मुख्य चोरी का उपाय इनका होता था बछड़ों को खोल देना, असमय में, गोदोहन का समय नहीं रहता था उसी समय बछड़ों को खोल देते थे, जहां तहां कई गोप थे इसलिए एक साथ खोलते थे, कि घर की जितनी भी स्त्रियां थी, गोपियां और गोप सब बछड़ों को पकड़ने में, बांधने में लग जाते थे, तब तक घर में जाकर के और खूब खाना चालू। तो चोरी में, भगवान की लीला में इनके साथियों का सहयोग बहुत जरूरी था, इसलिए वयस्य ब्रज बालक। और हरिश्री जी कहते हैं कि कोई भी काम करना हो, चाहे अच्छा या बुरा, तो अपने से बड़े को मिलाकर रखना चाहिए, इसे बलराम जी को साथ में रखे, सह राम। तो बड़ा भाई अगर भेद दे देगा तो काम नहीं हो सकता। यदि वो सुशील थे, बलराम जी चोर नहीं थे, लेकिन कृष्ण उनको मिलाकर रखते थे चतुराई से। यदि कभी कभी बलराम जी कहते थे कि देखो तुम्हें चोरी छोड़ दो, नहीं तो एक दिन भोगना पड़ेगा। दे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो तुमको मैं समझा रहा हूं, ये चोरी छोड़ दो, ये ठीक नहीं। ऐसे माँ जसोदा कह रही है, नहीं तो तुम्हारा विवाह भी नहीं होगा, अभी बातचीत चल रही है बरसाने में, किसी को पता लग जाएगा कि लड़का चोर है तो फिर वो लोग चोर से विवाह करेंगे ना, इसलिए चोरी छोड़ दो। बलराम जी भी बीच बीच में कहते थे ठीक काम नहीं है, चोरी छोड़ दो, लेकिन कृष्ण किसी न किसी तरह से उनको फुसला लेते थे, है कि नहीं भैया, जानते नहीं हो, धन किसी तरह से कमाना चाहिए, अपना अपने घर का तो ठीक है लेकिन और का खाना चाहिए। कभी कभी इस तरह की बातें करते थे मजाक। वास्तविक बात यह थी कि पूरा घर ब्रजमंडल में कृष्ण का था, पराया घर होने का प्रश्न ही नहीं था, घर सब अपना घर है, इसमें पराया क्या, चोरी क्या है, चोरी है ही नहीं, चोरी इसको नहीं कहते हैं, खाएं सब जगह स्वाद मिलता है, खाएं। तो सह राम पाले कह रहे हैं, हरिश्री जी कहते हैं कि जब कहीं कोई कार्य करना हो, अच्छा बुरा, तो अपने से बड़े को जरूर मिलाकर रखना चाहिए, तो सह राम और अपने साथियों को कोई भेद न देने पावे, सब मिल करके रहें, सफलता पाते हैं। तो भगवान कृष्ण अशेष माधुर्य प्रकटन पर श्री कृष्ण अपने वयस्यों के साथ, साथियों के साथ और अपने भाई बलराम जी के साथ ब्रजस्त्रियों को आनंद देने के लिए बहुत सी क्रीड़ा करने लगे। तो ब्रज की स्त्रियां उनके चापल कौमार चापल चापलम को देखती थी, कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम विच्छ कौमार चापलम। कौमार चापल का मतलब है कुमारावस्था में जो उनकी चपलता थी, चंचलता, उपद्रव, चोरी वगैरह, उसको देखती थी और बिना वर्णन किए नहीं रह सकती थी, इतना उनको अच्छा लगता था। वो तो देखती थी माखन खाते हैं, ये लीला करते हैं, वो लीला करते हैं, और भी करते हैं बहुत तरह की, तो उसका वर्णन करने की लालसा से माँ जसोदा के पास आ जाती थी। बाहर से तो ऐसा भाव बनाती थी कि उलाहना देने आई है, लेकिन वो वर्णन करने आती थी और कृष्ण को देखने आती थी कोई उपाय रचकर। तो श्रीमत्या के लिए तन मातु रीति हो चु समागता, तो तन मातु कृष्ण की माता यशोदा के पास आकर और वे गोपियां इस तरह से कहती थी, हे रानी जी, ये जो आपका पुत्र यहां खड़ा है, ओ नाको दम कर दिया है, बहुत उपद्रव किया, इसके उपद्रव की बात हम आपसे सुनाती हैं, क्या क्या कर रहा है। हम ग्वालिन हैं, हम लोगों का दूध का ही काम धंधा है, दूध से जीती हैं। लेकिन ये क्या करता है, वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्वचित असमय, जब समय नहीं होता है अभी गुदोहन का, उसी समय वत्सान मुंचन बछड़ों को खोल देता है, बछड़ों को खोल देता है, मतलब कि गौओं का दूध बछड़े पी जाए। और कभी कभी कृष्ण बछड़ों को खोलते थे और कोई गोपी गाली देती थी कि तुम्हारे बाप का बछड़ा है, क्यों खोला, क्यों खोला, तो कृष्ण कहते थे तो मैं तुम्हारे बछड़े को खोला तो बछड़ा दूध पिएगा ना कि मैं पीऊंगा, तुम्हारा बछड़ा बलवान होगा, हमारा हमको इसमें क्या मिला। और हत्यारिणी बछड़े को बांध रही हो, बाएं बाएं कर रहा है और चलती हो बराबर में, खोल दिया तो कोई तुम्हारा दूध मैं थोड़े ले जाऊंगा घर में, तुम्हारा बछड़ा बलवान होगा, ये होगा, पकड़ में आ जाने पर ऐसा कहते थे। तो बछड़ा क्यों खोलते थे कि एक ही सब वत्सन बहुवचन में, तो बछड़े खुल जाएंगे, लोग दौड़ेंगे पकड़ने के लिए इधर उधर घर से बाहर, और उसी समय जाकर घर में जो भी ताजा माखन दही रखा है खूब खाएंगे, इसके लिए खोलते। तो असमय का अर्थ ये है। और क्वचित, क्वच असमय का अर्थ गोदोहन का समय नहीं होता उस समय, और क्वचित का अर्थ, हाँ, इस पर एक प्रश्न उठाया श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने कि मां यशोदा कहती हैं कि असमय में खोल देता है, तो तुम लोगों को तो सावधान रहना चाहिए ना, कोई खोल दिया तो खोलते समय है इसको पकड़ ले, डांटे न खोले, और खोल दिया तो बछड़े को पकड़ ले। तो कहती हैं क्वचित, क्वचित का अर्थ है कि जब हम घर के काम धंधा में व्यग्र रहती हैं उस समय खोलता है, हमको पता भी नहीं चलता है कब खोला क्या खोला, जब हल्ला होता है कि बछड़े खुल गए तब हम जानती, तो हम क्या करें। और क्रोश संजात हास, और तो मां यशोदा ने कहा कि तो तुम लोग डांटती नहीं हो बच्चे को, डांटना चाहिए ना, क्रोश करना चाहिए, आक्रोश, उसको कुछ धमकी देनी चाहिए कि अगर खोले तो थप्पड़ मारूंगी, ठीक कर दूंगी, ऐसा नहीं कहती हो। तो कहते अरे रानी जी, हम जब क्रोध करती हैं, कुछ डांटती हैं, तो समझात हास, ये हंसने लगता है, ऐसा हंसता है कि क्या कहें, इसके मादक हास्य सुधा सिंधु में ही हम डूब जाती हैं। उस समय इतना ये मादक हंसी हंसता है कि हंसी में ही हम सब भूल जाते हैं। तुम ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया था, हाँ, ऐसे हंसने लगते, अब क्या करें, फिर इतनी सुंदर इसकी हंसी है, हम क्या करें। क्रोश संजात हास, हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि कोई कितना भी क्रोध करे स्वयं क्रोधित नहीं होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। तो वो क्रोध में तो नहीं होती है गोपियां, लेकिन बाहर से धमकी देती हैं तो ये हंस रहे, निंदा और स्तुति में भगवान सम है, हंसी आ रही है। बताइए, आक्रोश सुन करके, निंदा सुन करके, चोर चोर ये सुन करके किसी को हंसी आएगी, लेकिन भगवान सुन जाता हास, सम्यक जाता हास, बहुत सुंदर हंसी इसके चेहरे पर आ जाती है। स्तेयम स्वाद्वत, तो आखिर क्यों बछड़ा खोलता है, तो वो गोपिया कहती है चोरी करने के लिए, चोरी किस चीज की, ये दधी और माखन नवनीत आदि की चोरी करता है। तो मां यशोदा डांटती है गोपियों, कहती है अरे निर्दय हृदय वाली, जब मेरा बेटा, जब मेरा पुत्र माखन पसंद करता है, दही पसंद करता है, तो तुम लोग बिना चोरी किए, बिना मांगे दे क्यों नहीं देती हो, दे दोगी तो चोरी नहीं करेगा। तब वे कहती हैं कि ब्रजेश्वरी जी, इसको ऐसी आदत हो गई है, ये केवल चोरी किया हुआ ही खाने में तेज है। स्तेयम स्वादु अति, इसको स्तेयम स्वाद, इसको चोरी में मिला हुआ माखन या दही ही मीठा लगता है। लोग तो कई बार कहते हैं कि लाला खा लो, ये खा लो, तो कहते नहीं, क्या भिखमंगा समझ रही हो, हमारे घर में माखन नहीं है, चलती है दानी बनती, और ऐसा कहता है देने पर, और चुरा करके खाता है। चोरी किया हुआ ही धन खाना। कृष्ण कहते थे हम ऐसे नहीं खाएंगे, क्या समझती हो हम भिकमंगा हैं, बिना कमाए खाएंगे? नहीं, वो बहुत अच्छी कमाई करके खाओगे। हम भी राजा के लड़के हैं, ऐसे नहीं जहां तहां मांग करके खाते हैं। कभी मत पूछा करो कि खाओगे नहीं, हम ऐसे नहीं। इस तरह से कहते थे। तो स्तेयम स्वादु अति, स्वादु मत स्तेयम का अर्थ है स्तेना, चोरी किया हुआ माल ही इसको स्वादु लगता है और उसी को खाता है। अति खाता है क्या? दधि पय, दूध दही नवनीत, चोरी किया हुआ ही इसको अच्छा लगता है। तो माँ यशोदा ने कहा कि जब चोरी की इसको आदत है तो तुम लोग अपने सामान को माखन दही या दूध को क्यों नहीं ढंग से रखती हो, ऊंचे छीके पर रखा करो, ऐसे जगह रखा करो जहां छोटा बच्चा उसको पकड़ न सके। अब कृष्ण वहीं खड़े हैं, माँ यशोदा का कपड़ा पकड़ कर पीछे छिपे है और देख रहा है, इतना भोला भाला बन करके कि लगता है कि ये लड़का तो स्वप्न में भी चोरी जानता ही नहीं होगा। और ये भाव व्यक्त कर रहे हैं कि सुनो देखो माँ कितना ये सब झूठ बोल रही, हम नहीं कहेंगे, इनको जो चुगलखोरी करना है करे, हम संत हैं, हम साधु हैं, हम क्यों इनकी शिकायत करें, इनके मन में जो आ रहा है करे, लेकिन हम किसी की निंदा नहीं करते। जैसे कृष्ण ऐसा भाव व्यक्त करते हैं कि इनको पता ही नहीं है और ये आकर के झूठ मूठ के क्या बक रही, कभी किसी के घर गए ही नहीं, देखे ही नहीं है घर किसी का, और ये आकर कह रही है कि हमारे घर में चोरी करता है, करता है, वो करता है। तो माँ ने कहा कि ऊंचा जगह पर रखो, छिपा करके रखो। तो वो कहती है कल्पित स्तेय योग, ये स्तेय योग चोरी का इतना उपाय जानता है कि हम क्या करें। और कल्पित पहले जो उपाय प्रचलित नहीं है लोक में वो सब उपाय रच लेता है। कल्पित का अर्थ रचित, इसको अपने आप बहुत बहुत उपाय मालूम है चोरी करने का, बहुत उपाय करता है। क्या क्या उपाय करता है ये भी वो लोग बताए हैं। जैसे मान लीजिए ऊंचे पर छीका है तो कई पीढ़ा सजा लेता है, कभी उखल पर चढ़ जाता है, कभी किसी सखा के स्कंध पर चढ़ जाता है, और कभी भूल से नसेनी पड़ी रहती है, सीढ़ी रहती है, उसको लाकर लगा लेता है। माँ यशोदा ने कहा तो सीढ़ी को ऐसे जगह रखो कि फिर उस पर न चढ़े, लेकिन वो कहे कभी कभी भूल हो जाती है। अच्छा, सब करने के बाद भी इसको जब छीका नहीं पकड़ में मिलता है, वहां तक हाथ नहीं पड़ता है, तब लोहा बंधे हुए लाठी से नीचे से छेद करता है। और इतना छेद करने में रानी जी प्रवीण है कि अपने मुख में धारा रोकता है दूध की, और ये रोकता है, कभी कभी सखाओं को कहता है तुम रोको तुम रोको, और इस तरह से सब बर्तन खाली कर। तो जहां हाथ पहुंचता है तो पहुंचता ही है, नहीं पहुंचता है तो इससे मारकर फोड़ करके खा लेता। तो जिस समय वो कहते मां कहते जिस समय मेरा पुत्र खाता है उसी समय जाकर के बाह क्यों नहीं पकड़ ली, तो कहते रानी जी ऐसा हमको मोहनता छा जाती है, इतनी मोहन शक्ति इसमें है कि हम जड़ बन करके देखती रहती, और खा करके जब भाग जाता है तब हम हल्ला करते हैं कि चोर 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 चोर, चोर, चोर। और इस तरह से क्या करे, बहुत उपाय जानता है। मरकन भोक्षण, तो माँ यशोदा ने कहा कि ठीक है छोड़ो, जब बच्चा चोरी कहीं माल खाना चाहता है तुम्हारे घर का सामान, तो देखो सखी तुम्हारा जितना खाए वो हमसे ले लिया करो, खाने दो, जब यही इसकी आदत है तो खाने दो। तो कहती ये खाए इसका हमको दुख नहीं है। मरकन भोक्ष्यति, ये बानरों को पहले बांटता है, खाने के पहले बानरों को बांटता है। हरीश्वर जी कहते हैं कि कोई महान व्यक्ति यदि प्रसंग बस कुसंग से गलत काम करे लेकिन उसका महान स्वभाव जो होता है वो जाता नहीं। भगवान चोरी करते हैं लेकिन पहले दान करते हैं, पहले दान करके तब खाते हैं, बानरों को बांट करके तब खाते थे। तो मरकन भोक्षति, बानर को खिलाता है, और कभी कभी तो बानर भी नहीं खाते हैं, तो बर्तन फोड़ता है। कहते मरकान भोक्ष्यम विभजति, बानरों को खिलाते हुए बांटता है। हरिश्वरी जी ने यह भी कहा है कि भगवान ने सोचा कि केवल आदि नहीं होना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए, अकेले खाने वाला आदमी पापी माना जाता है, इसलिए बांट कर खाना चाहिए। भले चोरी का ही धन है तो क्या, लेकिन बांट कर खाना चाहिए। तो भगवान ने सोचा, हरे कृष्णा, तो भगवान ने सोचा कि एक गलत काम तो कर ही रहा हूं चोरी, लेकिन दूसरा क्यों गलती करूं, बिना बांटे क्यों खाऊं। तो बानरों को बांट रहे, माखन दही खूब। तो मां ने कहा कि ये तो ठीक है, बेचारे भूखे रहते होंगे बानर, अगर उनको बांट देता है तो ठीक करता है। ये कहते नहीं, बानर तो फल आदि खा करके तृप्त रहते हैं, वो भी नहीं पूछते हैं, और जब वे नहीं खाते हैं तो भांड भी नती, ये बर्तन फोड़ देता है। पूछिए यही खड़ा है, बर्तन फोड़ देता है। बानर भी जब नहीं खाते हैं, सचेत न अति, जब बानर नहीं खाते हैं, बानर के ग्रुप को सब बोल रहे हैं, तो और सबको खिला लेता है, बानर भी तृप्त हो जाते हैं। तो तृप्त तो फल खा करके रहते हैं, वो माखन आदि वो बहुत कम खाते हैं बानर। हाँ, हरिश्वरी जी ने कहा है कि भगवान बानरों को स्पेशली क्यों खिला रहे हैं, उन्होंने सोचा कि जब सीता का हरण हुआ था तो मैं बानरों को बहुत लड़ाया बिना वेतन के, बेचारे फल फूल खा करके और लड़ते थे, कुछ दिया नहीं, तो सारा वेतन अब दे रहे बानरों को, इस अवतार में वेतन दे रहे, इनको पूरा कर दिया जाए। तो जब कोई नहीं खा पाता है तो भांडम भिन्नति, बर्तन फोड़ देता है। और द्रव्यालाभ है, और किसी किसी घर में जब किसको वस्तु हाथ नहीं लगती है, जब किसी घर में चोरी करने जाता है और सामान उपाय भी किया, पीढ़ा भी जुटाया, उकल भी सब, लेकिन सामान उतारने की कोशिश किया या छेद किया, उसमें कुछ आई ही नहीं, अच्छा कुछ नहीं मिल पाया, ऊपर से घड़ा उतारा मेटा उतारा कुछ मिला नहीं, नहीं मिलने पर तो इतना साप देता है उस घर को, गाली देता है, कहता है दरिद्रता वसतु निरंतरम अस्मिन गृह, दरिद्रता बस जाए इस घर में, मेरे लिए कुछ नहीं है इस घर में, और बड़बड़ाता है, बड़बड़ाता है, कल मैं आऊंगा तो आग लेकर के आऊंगा और फूंक दूंगा इस घर को, जहां मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा। और गाली देता है घर के स्वामी को कि कैसा व्यक्ति है, कैसी स्त्री है कि घर में कुछ नहीं रखी, जिसके द्वारा भगवान ने शिक्षा दे रहे हैं कि जिसके घर में घी दूध दही ना हो तो भगवान भी रंज हो जाते हैं, रखना चाहिए। हम लोग सुने हैं कि नंदगांव में आज भी लोग माखन रखते हैं ताजा और उसका भोग नहीं लगाते हैं, भगवान रोज खाते हैं छिप करके घर घर में, ये भाव है। तो जिस घर में द्रव्यालाभ है, जब द्रव्य लाभ नहीं होता है तो क्रोध करते, स्वगृह कुपित जाते पुकुर सुत्तोकान, और जब कुछ नहीं मिलता है घर में तो साप देते हैं, कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, घर को जला देंगे, और तत्काल में कुछ करने की तो शक्ति होती नहीं है, सोए हुए बच्चों को चींटी काट करके उनका कान ऐंठ करके भाग जाते हैं और वो रोने लगते हैं मनु जगा रहे हैं कि भजन करो क्यों सोए हो इस तरह से, और बच्चे आय आय करने लगते हैं घर में नहीं मिलता है तब बच्चों को तंग करते हैं, मिल जाता है तो चुपचाप संतुष्ट होकर चले जाते। हस्ताग्राह्य रचती विधि रचयती विधि पीठ कोलू कला दे, हस्त से जो अग्राह्य समान होता है तब पीढ़ा पीठक पीढ़ा समझे है ना, पीढ़ा जिसमें छोटे छोटे पैर होते हैं लकड़ी का ऐसे बना होता, बेंच सजाता है पीढ़ा, और पीठक या पीठ बच्चों के पीठ पर चढ़ते हैं जो भी हो या उनके कंधे पर चढ़ा, उलू खलाद दे छिद्रम अंतर निहित वही न, अंतर निहित वही न, किस बर्तन में क्या माल है इसको इसका ज्ञान रहता है, माँ यशोदा ने कहा कि इसको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे बर्तन में क्या रखा है, उसका मुख तो ऊपर रहता है, इसको कैसे पता चलता है कि उसमें अनाज है कि घी है कि तेल है कि दही है दूध है क्या है। तो ये वे कहते हैं वैना, इसको अंतर निहित वैना, अंतर में क्या है इसको सब पता होता है। ये पूरा जान गया है कि इस बर्तन में घी रखा जाएगा तो ऊपर इस तरह का वातावरण छाएगा, स्निग्ध होगा, सिक्त होगा, घी रखा जाएगा तो ऐसा होगा, दूध रखा जाएगा तो ऐसा होगा। और अभी ये भी इसको पता चल जाता है कि ताजा माल है इसमें, इसको पता चल जाता है। सब बाहरी आकार प्रकार से वो खाते खाते चोरी करते करते पूरा मिला चुका है किस बर्तन में क्या होगा, और इसीलिए अगर नहीं मिलता है उसके बाद भी तो छेद करता है, सिक्के भांडे सुतद। तो माँ ने कहा कि तो तुम लोग अंधकार से पूर्ण घर में रखा करो सब सामान, अंधकार भरी कोठरी में रखो, वहां जाएगा ही नहीं। तब वे कहती है मैया ध्वांतागारे, हम लोग तो पहले से ही ध्वांतागार में अंधकार से पूर्ण घर में सब सामान रखती हैं, लेकिन धृतमन गणम स्वांगमर्थ प्रदीपम, एक तो इसका अंग ही जो है वो प्रदीप है, चमकता रहता है प्रकृष्ट दीपक जैसा, इसका सांवला शरीर है लेकिन नील मणि की तरह जगमग करता रहता है। तो जिस घर में जाता है वो वहां का अंधकार दूर हो जाता है, वो घर आलोकित हो जाता है, और उस पर तुमने मणि गण धृतम अनेक मणियां पहना दिया, तो अंधकार रहता ही नहीं। प्रकारांतर से व्यंग कर रही हैं, बच्चा तो ऐसा चोर है ही, तुम भी सहायता कर रही हो चोरी करने में, और गहने सजा दी, चोर को गहना पहनाना चाहिए और आभूषण लगा करके जाता है, तो ऐसे देह ही इसका चमकता है अंधकार में, और ऊपर से गहना पहना दिया, और कह रहे हो कि अंधकार में रखो, हम कहां रखें, सारा अंधकार तो नष्ट हो जाता है। इस चोर के देह पर इतना गहना पहनाना ठीक नहीं, उनके कहने का आशा ये था। और कृष्ण तो सब चुपचाप सुन रहे थे, भगवान अपनी कथा शांति से सुन रहे हैं, बीच में बहस नहीं कर रहे हैं। तो धृत मणि गणम स्वांगमर्थ प्रदीपम, और अर्थ प्रदीप का अर्थ है कि प्रयोजन साधित करने भर इसके अंग से ज्योति निकल जाती है पर्याप्त, अर्थ प्रदीपम, प्रयोजन के लिए इसका अंग जो है शरीर है प्रदीप है, प्रकृष्ट दीप है। अच्छा ठीक है, सब कुछ करता है लेकिन फिर भी सावधान रहा करो। तो कहते हैं सावधान क्या रहे, खाक सावधान में, क्या घर का काम नहीं करें? ठीक, जब हम घर के काम धंधे में व्यग्र होती है उसी समय चांस इसको मिलता है, क्योंकि इसकी सेना है, इसके साथी हैं, सबको लगाया रहता है कि कब गोपियां घर के काम में व्यग्र होती हैं, और ये बच्चे जाकर के सूचना देते हैं और बस उसी समय जाकर के सब चोरी करता है। एवं इतना ही नहीं करता है, अभी तो केवल चोरी की बात कही ना, माताजी इतना ही नहीं करता है, धारष्टानी उसती, इतनी धृष्टता करता है, इतनी धृष्टता करता है, हम क्या कहें, बड़ी बड़ी गोपियों को भी भाभी कहता है, ये इतनी धृष्टता करता है, और कहता है कि हमारी इच्छा है मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। अभी विवाह का मतलब नहीं जानता होगा ये बच्चा, लेकिन जहां तहां ये बात कहता रहता है। इसकी धृष्टता देखिए, बहुत धृष्टता करता है, और एक धृष्टता करता है, कभी कभी जब हम लोग इसको पकड़ लेती हैं और कहती हैं रे रे चोर चोर, तो उल्टे कहता है तुम चोर हो, तुम चौरा, अहम गृह स्वामी, मेरा घर है, निकल जाओ इस घर से, ऐसा डांटता है, इतनी धृष्टता करता है, मेरा घर है, मैं घर का मालिक हूं, तुम जाओ, चोर कहती अभी निकलवा दूंगा घर से, जानती हो मैं कितना अपने पिताजी का प्रिय लड़का हूं, अभी जाकर नंद बाबा से कह दूंगा तो बस तुमको निकाल देंगे, और तुम कुछ भी जाकर के कहो, हमारे पिताजी इतने विश्वास करते हैं हम पर कि वे तो कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ माँ कुछ है डांटती है, लेकिन उसको भी मैं ठीक कर लूंगा, जाओ कहो। कहकर क्या करोगी, धारष्टानी हो सकती, और कुरुते मेहना देनी वास्तव। और वास्तव जब हम किसी देवता की पूजा करने के लिए कोई स्थान लिपती पोतती हैं, लिप करके लेपन करके पोत करके जब चिकना करती हैं, तो वहां पर बिलार और किसी जीव का मल लाकर डाल देता है, कहीं किसी चीज से फरसा से चाहे जैसे तैसे उठा करके कृष्ण डाल देता। मेहना देनी, मेहन का अर्थ है शौच कर देना, पेशाब कर देना, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के दिव्य शरीर में सब चीज नहीं है। रुक्मिणी जी ने कहा है कि भगवान के देह में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, दाढ़ी मूछ केश इस प्रकार के नहीं, ये कुछ खराबी नहीं है। सच्चिदानंद घन एक चीज है, आत्म तत्व। इसलिए हम मेहनादिनी का अर्थ यह नहीं होगा कि पेशाब कर देते हैं या शौच कर देते हैं गोपियों के लिपे पुते स्थान पर, या ऐसा गोपियों को देखने में लगता होगा तो भगवान की माया में सृष्टि है ऐसा कर देते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर से पेशाब नहीं करते। देवता लोग भी पेशाब नहीं करते, देवता लोग शौच नहीं करते हैं, पेशाब नहीं करते। इसी संसार में वृक्ष देखिए खाते हैं पीते हैं, लेकिन ये तो कभी भी लैट्रिन नहीं जाते हैं वृक्ष, न पेशाब करते हैं न, और खाते रोज हैं, ये तो 24 घंटे खाते रहते हैं जमीन से, पादप कहते हैं, ये पैर से पीते हैं, पीते रहते। तो भगवान भी दिव्य अंग वाले हैं तो वे तो ये सब करते नहीं है। कहने का आशय यह है कि किसी जीव का, जैसे एक टीकाकार ने लिखा है कि बिल्ली का सूखा मल लाकर डाल देते, जो देवता के बैठने का स्थान बनाई है वहां कुछ हड्डी लाकर के डाल दे, आदिनी मेहनादिनी हड्डी लाकर डाल दी, इतनी धृष्टता करता है, हम क्या करें। और स्त्रियों पाए विरचित कृति सुप्रतीको अस्तात्, एक बार तो इतना व्यस्त होता है कि इतने उपाय रचने में व्यस्त होता है, माता जी आप हमारे घर में होती और हमारे साथ कोने में छिप करके देखती कि चोरी के उपाय रचने में कितना व्यस्त होता है, लगता है बहुत बड़ा मिस्त्री है, बहुत उपाय जानता है, जो साइंटिस्ट हो जाता है उपाय रचने में, और यहाँ पर यहाँ ऐसे खड़ा है सुप्रतीक, यहाँ तो लगता ही नहीं है कि इसमें जान है कुछ, ये तो मूर्ति जैसा खड़ा है, सुप्रतीक है आज। और वास्तव में कृष्ण कुछ भी नहीं बोल रहे थे, और अब जैसे जैसे गोपियां कह रही थी वैसे वैसे इनके चेहरे पर भय आ रहा था, तो आज तो लगता है कि माता मारेगी मुझे। तो जब माता सुनती थी गोपियों की बात तो कृष्ण की तरफ देखती थी, और गोपियां भी देखती थी कि अब चेहरे पर कुछ भय आने लगा है, तो और उनको अच्छा लगता था, वो जानती थी कि माँ तो मारेगी नहीं, ऐसा नहीं चाहती थी कि माँ इसको पीटे छड़ी से या थप्पड़ से। तो माँ देखने लगी कृष्ण को, देख ली कि ओह इसका मुख जो है भयभीत हो रहा है, लेकिन भयभीत मुख पर भी बहुत सुंदर श्री थी, सभय नयन श्री मुखालोक ने भी, गोपियां जो उलाहना दे रही थी तो कृष्ण को हमेशा देखती रहती थी, तो सभय नयन आंख में भय आ गया था और इसके कारण मुख बड़ा सुंदर लग रहा था। तो माँ जब देखी प्रहसित मुखी तो माँ इसको देख करके हंसने लगी, खुश हो गई, क्रोधित नहीं हुई। देखिए उलाहना देने के बाद बच्चे पर क्रोधित नहीं हुई, उसने सोचा कि मेरा पुत्र यदि मैं डांट देती हूं तो इसको इसके हृदय में दुख लगेगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा इसका, इसलिए इसको डांटना ठीक नहीं है, आखिर खाने की ही तो चोरी किया है ना, कोई और तो चोरी किया नहीं है, खाना चाहता है जो अच्छा लगता है खा रहा है, अगर दूसरे के घर का ही सामान अच्छा लग रहा है फिर भी इसको डांटना ठीक नहीं है। तो वे लोग व्याख्या तारता उसके साथ वो लोग सारा कृष्ण कथा कही, सारा दोष वर्णन की, लेकिन माँ ने उपालब्धु न इच्छत, इच्छा तक नहीं किया कृष्ण को डांटने का, डांटी नहीं, केवल इतना ही कहा जो कह रहे हैं ऐसा करते हो क्या, ये जो गोपियां कह रहे हैं ऐसा करते हो, वो तो चुप मुंह लटकाए थे, वो प्रतिकार नहीं कर सके, अब तो समझ गए कि बिल्कुल प्रमाण है और पीटेगी तो इतना भयभीत नेत्र से हो गए, तो माँ ने कहा अरे बेटा कोई बात नहीं, उठा करके गोद में रख लिया और तब कृष्ण गोपियों को कहते हैं आओ करो करो तुम। तो हरीश्वर जी कहते हैं कि जब कोई गलत काम करना हो जानबूझ करके तो अपना जो प्रधान व्यक्ति हो उसको मिला लेना चाहिए, तब निर्भय काम होता है। लाख उलाहना दी लेकिन मां मिली हुई है, अब क्या हो। तो ये जीत गए कृष्ण मां उल्टे खुश हो गए, दूध पिलाने लगी और उसने कहा कोई बात नहीं जाओ अपने घर, तुम लोग गोपियों को कह दिया जाओ घर, जो भी सामान बर्बाद करता है हमारे घर से लिया करो। तो गोपियां तो कोई लेने की बात ही नहीं थी, उसी के लिए वो रोज आती थी। इस प्रकार से कृष्ण बाल लीला करते थे। हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद।